देखते हैं सूरतुल हज आयत नंबर 1 से 22 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुरू हो रही है पूरी इंसानियत के से खिताब के साथ, या अय्युहन्नास, ए लोगों। कौन लोगों? मुसलमान, काफिर, हिंदू और कोई यहूदी, नसारा, कौन? सब के सब, जितने इंसान हैं, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, ए तमाम इंसानियत। इससे क्या पता चला? ये कुरान जो है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये कुरान तो खिताब कर रहा है सारी इंसानियत को। तब सारी इंसानियत तो सुन ही नहीं रही, ना पढ़ रही है, ना उनको पता है। तो फिर अब ये हमारा काम है कि हम उन तक पहुंचाएंगे कि देखो तुम्हें तुम्हारे रब ने पुकारा है इस किताब में। ये किताब सिर्फ हमारी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है जो सारी इंसानियत के लिए है। अब इससे फायदा कौन उठाता है वो बात की बात है, मगर यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को कोई बात बताई गई और बाकियों को नहीं, नहीं, सब के लिए। ये चूंकि आखिरी किताब है इसलिए इसके अंदर हर एक को खिताब करके कहा गया, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से। अल्लाह अकबर। और तकवा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, विकाया से शुरू ये लफ्ज आता है ना, यानी बचना भी इसमें आता है, हिफाजत करना भी इसमें आता है, एक गॉड कॉन्शियसनेस भी आती है कि इंसान हर वक्त एक उसके अंदर रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो भी तकवा इसको भी कहते हैं। तो कैसे तकवा का माना हम समझेंगे? तकवा का माना हज़रत उमर ने अबू दर्दा से पूछा था कि तकवा क्या होता है, तो फरमाया कि क्या कभी आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जिसके दोनों तरफ कांटे हों? हज़रत उमर ने फरमाया हाँ। पूछा फिर कैसे गुजरते हैं? फरमाया कपड़ों को समेट के, बच बच के। फरमाया यही तो तकवा है, यही तकवा है कि इंसान अपनी जिंदगी में बच बच के चले, इधर भी कांटे, इधर भी फितने, उधर भी फितने, इधर ये मसले, इधर वो, इंसान खुद को बचा बचा के बस इस जिंदगी की गाड़ी चलाता जाए। जैसे आप मसलन गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी अपने मुल्कों में आपने देखा है कि कोई छोटी छोटी बाज दफा गलियों में गाड़ी लेके जानी पड़ती है, जहां पे लोग भी बहुत बेतहाशा हजूम होता है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से है, कभी आगे गड़ा है, कभी आगे कुछ है, तो कितनी स्लो गाड़ी चलाते हैं और कितनी बचा बचा के चलाते हैं, कोई आगे ना आ जाए, कोई ऐसे ना हो जाए। तो देखें कितने आप कॉन्शियस हो जाते हैं, बल्कि आगे कई लोग स्टेयरिंग के बिल्कुल ऊपर ही चढ़ के हो जाते हैं, जैसे बैठ जाते हैं आगे बिल्कुल शीशे से लग के, और ऐसे दिख रहे होते हैं, इतने कॉन्शियस होते हैं कि अब ये ना हो मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ जाए, ये ना हो कि गाड़ी कहीं किसी गड्ढे में गिर जाए, ये ना हो कि, और स्पीड भी बड़ी वो एहतियात की रखते हैं, बड़ी मुश्किल से ध्यान ध्यान से चला चला के इंच इंच करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा होता है ना। तो तकवा यही तो है, इस जिंदगी को भी ऐसे ही संभाल संभाल के गुजारना है कि बस कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं अल्लाह की नाराजगी ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए। ये तकवा है, इस तरह जिंदगी गुजरनी चाहिए। और इत्तकुल्लाह नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्कि तकु रब्बकुम, रब तो तुम सबका ही है ना, वो है, उसको इलाह कोई मानता है नहीं, लेकिन रब तो तुम सबका है, यानी तुम्हारा रब कौन होता है? तुम्हारा मालिक, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला, तुम्हें रिस्क देने वाला, तुम्हें बढ़ाने वाला, तुम्हारी परवरिश करने वाला, तुम्हें बड़ा कर कर करके एक उस तक पहुंचाने वाला, एक उम्र तक, ये सब सारे जो जितनी बातें मैंने कही ना, वो एक लफ्ज रब में है। तो रब तो तुम सबका ही है, वो तुम मानो ना मानो, मगर सोचो जो रब होगा, पहली बात ही रब के साथ तारुफ करा के, बल्कि कुरान करीम देखे शुरू ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह ही رب العالم، رب ہے جہانوں کا، رب یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچانی اس سے کروائی، اس سے نہیں پہچان کروائی کہ وہ کوئی عذاب دینے والا ہے، وہ کوئی سختی کرنے والا ہے، وہ تمہیں حکم دینے والا ہے، وہ تمہاری کچھ نہیں، رب ہے، تاکہ انسان اس وقت ہی سمجھ جائے کہ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، پالنا پالنا کس کے لیے آتا ہے ذہن میں، ویسے مطلب عام رشتوں میں انسانوں میں یا پالنے کی بات کرتے ہیں، کون ذہن میں آتا ہے؟ ماں ہے نا، ماں پالتی ہے نا بچے کو، تو جو ہی پالنے والے کی بات ذہن میں آتی ہے، اسی وقت ایک پیار، محبت، شفقت، یہ باتیں آتی ہیں نا، جیسے کیئر، اس چیز کی ذہن میں آتا ہے، تو وہ تمہارا رب ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا رب ہے، تو ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ وہ شفیق اور مہربان جو پالنے والا ہے، کیا کبھی وہ چاہتا ہے جس کو پال رہا ہو اس کو نقصان دے، اس کو کوئی تکلیف دے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ تمہارا رب ہے، یہ یاد رکھنا، ڈرو اس سے۔ اِنَّا زَلْزَلَا تَسَّعَاتِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، جو کہ عام زلزلہ نہیں ہوگا، وہ زلزلہ تَسَّعَا ہوگا، قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ عام زلزلے تو تم سب نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے، ہر ایک کو زندگی میں کبھی زلزلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو زلزلہ تَسَّعَا ہے نا، قیامت کا زلزلہ، وہ شیئن عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور سوچ لو جس کو کہ رب بڑا کہہ دینا، وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جس کو رب کہہ دینا کہ وہ عذاب ہے بڑا عظیم، وہ عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ جس کو رب کہہ دے کہ یہ رحمت ہے، وہ رحمت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رب بات کر رہا ہے نا، وہ جتنا بڑا ہے وہ پھر اس کے مطابق ہی بتاتا ہے۔ ہم چھوٹے، ہماری ہر چیز ذہن چھوٹا، ہمارے جو ہم چیزیں بتا رہے تھے وہ بھی ہمارے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں۔ رب جب فرما دے شیئن عظیم، تو وہ اپنے مطابق بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی کیوں کہا گیا بڑی چیز؟ بڑی چیز کا مطلب کیا؟ یعنی تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ چیز کیا ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی سویر ہے وہ، عظیم نا مطلب سٹرونگ ہے، اتنی سخت ہے وہ، بہت بڑی ہے۔ یوم، کیسی کیسا دن ہے وہ، تفسیر کیا اس یوم عظیم کی، یا شیئن عظیم کی جو تفسیر ہے۔ اب اس انسان سوچتا ہے کیسے بڑی چیز ہے، اچھا اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیسے بڑی چیز ہے وہ۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم سارے جمع ہے نا، تم سب دیکھو گے، ہاں اس کو، یعنی جتنے بھی اس وقت لوگ زندہ ہوں گے وہ سب دیکھیں گے۔ دونوں تفسیریں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تم دیکھو گے اس کو، کس کو؟ زلزلے کو یا قیامت کو۔ تذہلو، کہ بھول جائے گی، زہول سے میں نے آپ کو بتایا نا، یعنی اتنا خوف ہوگا، اس قدر پہنے کو کا کہ بھول جائے گی، کون؟ کلو مردعاتن، ہر دودھ پلانے والی، اما اردعات، جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہوگی، اس کو ہی بھول جائے۔ آپ نے دیکھا ہے جو گود کا بچہ ہوتا ہے نا، جس کو عورت دودھ پلاتی ہے، وہ بچہ بڑا ہی پیارا بھی ہوتا ہے، بہت اس کی وہ کیئر بھی کرتی ہے، بڑا اس کو یعنی ہر وقت اس کا دھیان بچے کی طرف ہوتا ہے۔ بچہ اگر کہیں سو بھی رہا ہو نا، تو ماں 10-10 دفعہ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے سب، دودھ پی۔ آپ لوگوں نے جو مائیں ہیں بیٹھی ہوئی، ان کو سمجھ آتی ہوگی، رات کو بھی ماں اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے، اچھا سب صحیح ہے، اچھا سانس صحیح لے رہا ہے، صحیح سویا ہوا ہے۔ اس کو بھول ہی نہیں سکتی، چاہے رات کو سو بھی رہی ہو تب بھی نہیں بھولتی۔ لیکن وہ شیئن عظیم ہے نا، جو زلزلہ، اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، جو اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی، جب یہ زلزلہ آئے گا تو وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور کون سے بچے کو؟ امار دات، جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، یعنی گود میں ہے بچہ، और दूध पी रहा है, और उसको यही नहीं पता कि ये मैंने बच्चा साथ लगाया हुआ और दूध पिला रही हूं इसको, और बच्चे को फेंकेगी और दौड़ेगी। और यहां पे अम्मा का लफ्ज आया, अम्मा, अमन नहीं जिसको, और मैंने आपको बताया था ना मन तो आता है ना इंसान वगैरह के लिए, अम्मा कोई भी चीज, यानी अब उसको वो बच्चा नहीं वो चीज लग रहा है, चीज है उसके लिए, जैसे ऐसे वो उसको भूल जाएगी, जैसे मेरा बच्चा नहीं है। इतना खौफ, इतनी गम और इस कदर परेशानी होगी, तो वो कैसा दिन होगा जबकि ये जलजला आएगा और जमीन के ऊपर ये जो सीन है ये सीन होगा जमीन के ऊपर। وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, और गिरा देगी हर हमल वाली अपने हमल को, यानी हर जो प्रेग्नेंट औरत होगी उसका मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज भी कब होता है किसी औरत का, जब कोई शदीद गम या शदीद कोई परेशानी ऐसे शौक लग जाता है ना तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये सोचो कि वो कैसा गम होगा या कैसी वो हालत होगी उस वक्त के औरत का हमल गिर जाएगा, क्योंकि ये जलजला जो है ना, जलजला जलजला, ये इसका रूट वर्ड है जलजल, रुबाई है, यानी फोर लेटर्स के साथ इसका रूट वर्ड है, और इसके अंदर ये जो रिपीटिशन आती है ना जल और फिर जल जलजल, ये बताती है, जो रेपिटिशन बता रही है ऑफ ये हरूफ की, जो अल्फाबेट्स की रेपिटिशन है वो बता रही है कि जैसे ये जल जल हम दो दफा बोलते हैं ना, इसी तरह जो ये हरकत भी होगी ना जमीन की, ये भी मुसलसल रहेगी, रिपीट होती जाएगी, इतनी रिपीट होगी, इतनी दफा होगी, यानी हटेगा ही नहीं जब तक कि हर चीज फना ना हो जाए। इतना ज्यादा ये जलजला होगा, इतना तेज होगा जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा, और जो बंद भी नहीं होगा। आप अंदाजा कीजिए कि चंद सेकंड्स के जलजले आते हैं जो कि हमने कभी देखे हो, या बहुत भी हो गया तो एक मिनट का हो जाएगा, वो एक मिनट का भी ऐसे लगता है एक सती गुजर गई, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है कब रुकेगा ये। और यहाँ पे अल्लाह ताला और भी मिसाल हो सकती थी, लोग अपना कारोबार भूल जाएंगे, लोग अपनी जॉब भूल जाएंगे, लोग खाना पकाने वाली अपना खाना भूल जाएगी, ये भी तो हो सकता था, घरों वाले अपनी घर जायदादें भूल जाएंगे। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह वो मिसाल दी कि जो माँ की है और इससे करीबी और इससे ज्यादा जो ताल्लुक जो केयर का है ना वो किसी और के साथ नहीं हो सकता, ना आपका आपकी जॉब के साथ, ना घरों के साथ, ना कारोबार के साथ, जितना माँ का बच्चे के साथ होता है, और वो भी बड़े बच्चों के साथ, थोड़ा फिर भी लेट गो कर देती है माएं, लेकिन जो 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 ऐसा बच्चा होता है ना जो गोद में होता है दूध पीने वाला, उसको तो बिल्कुल ही अपनी साथ लगा के रखती है। जो औरत ऐसे बच्चे को भूल जाए तो सोचो कि फिर बाकी लोगों का क्या आलम होगा। यानी इससे आपको एक बात ये बताई गई, दिखाया गया सीन कि जब माँ की ये हालत है तो फिर सोचो कि दूसरे लोगों को क्या हालात होंगे और क्या क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। और शौक और सदमा और खौफ का आलम ये होगा कि यानी इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल ये चीज होगी कि हमल वालियों के हमल ही गिर जाएंगे। ये तो चलो दो औरतों की मिसालों के साथ बात हो गई, आगे देखें बाकी लोग कैसे नजर आ रहे होंगे। अब इसके ऊपर अब ये जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, कई डिजास्टर्स का दिखाते हैं, कभी दिखा देते हैं क्यामत आ गई है और इस तरह हो रहा है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसकी जो तस्वीर कशी की है ना सुभान अल्लाह, कि इंसान उसको अगर अपने जहन में ला के इसको विजुअलाइज करे ना तो कांप उठता है कि अल्लाह को क्या वक्त होगा जिस दिन ये आलम हो रहा होगा। वह तरन्ना सा सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे जैसे नशे में, हालांकि माँ हूँ भी सुकारा, वो नशे में नहीं होंगे ये, वो तुम्हें लगेगा क्रेजी हुए पड़े हैं। हाँ सिर्फ घूम रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने कोई बावले नहीं हो जाते पागल से हुए में है, पता नहीं इन्होंने नशे किए हैं, कोई देख के सोचे कि पता नहीं नशा किया, नशा नहीं है वो, इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये कहते हैं ना ट्रॉमेटाइज्ड हैं इतने ज्यादा कि ऐसे लग रहा है कि इनका दिमाग खराब हो गया, जैसे ये नशे में है। अल्लाह वाला कि नाजा बल्लाही शदीद, अल्लाह ताला ने फरमाया उनका कसूर नहीं, वो नशे में नहीं है, लेकिन अल्लाह का अजाब भी बहुत शदीद है, बहुत शदीद है। और अल्लाह हम तेरे असाबों को सहने की ताकत नहीं रखते, अल्लाह हम तेरे असाबों को सहने की ताकत नहीं रखते। अब ये जो सारा मंजर है ये किस वक्त का है, कब ये, अब हमने आयतों के एक एक लफ्ज के साथ देख लिया ना कि ये क्या है, मगर ये कब होगा, टाइमिंग क्या है इसकी, तो इस बारे में दो रिवायात आती हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। एक तो ये कि ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहालते सफर नाजिल हुई, यानी सफर में जा रहे थे, बाज जगह पे है कि ये गजवाए मुरैसी के मौके पे ही जब सफर में जा रहे थे, तो तब आपने बुलंद आवाज से इसकी तिलावत शुरू फरमाई, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, रफ़क़ाए जो सफ़र थे सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन के जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खिताब करके फरमाया कि क़यामत का सिलसिला जिसका जिक्र इस आयत में है, क्या तुम जानते हो ये किस दिन होगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, सहाबा कराम का एहतराम का तरीका ये होता था, ये नहीं कि बढ़ बढ़ के आगे, हाँ हमें पता है जिस दिन ऐसे होगा ऐसे, नहीं, वो कहते थे अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो दिन होगा जिसमें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से खिताब करके फरमाएंगे जहन्नुम में जाने वालों को उठाएं, यानी आप अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकालें, तो आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे ए मेरे रब जहन्नुम का हिस्सा, यानी जहन्नुम वाले कौन लोग हैं, यानी कितने लोग हैं जहन्नुम वाले, मतलब ये है, तो उनको कहा जाएगा हर हजार में से 1000 में से 999, 999 यानी जहन्नमी है और एक जन्नती है। ये सुन के सहाबा कराम तो बिल्कुल ही ऐसे ना उम्मीद हो गए, उन्होंने हंसना छोड़ दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये हाल देखा तो फरमाया नेक अमल करो और खुश रहो, जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम्हारे साथ दो किस्म की मखलूक है और वो जहन्नुम के अंदर जाएगी, यानी वो होंगे 999 में से याजूज माजूज और इबलीस। तब सहाबा खुश हुए। अब ये रिवायत में ये आता है कि जब ये कहा जाएगा ना कि जहन्नुम का हिस्सा हर हजार में से 999 है, तो ये वो वक्त होगा जब खौफ के मारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हमल वाली औरतों का हमल साकित हो जाएगा, और यानी ये दूध पिलाने वाली उसको भूल जाएगी। तो अगर ये वहां पे है, वहां का बयान हो रहा है, तो फिर ये जस्ट एक इस चीज को मिसाल के तौर पे बताया जा रहा है कि क्यामत में ऐसी हालत हो जाएगी, यानी खौफ की ये हालत हो जाएगी कि जो औरत यानी अगर दुनिया में होती और उसका हमल होता, क्योंकि वहां पे तो कोई दूध पिला नहीं रही या कुछ है, तो उसका हमल वाली का हमल गिर जाता और दूध पिलाने वाली वो अपने बच्चे को भूल जाती, इतना हौलनाक वक्त वो होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाएगी ना सब हशर के मैदान में खड़े हैं और कह दिया जाए 1000 में से 999 जहन्नुम के अंदर जा रहे हैं, तो सबको तो अपनी पड़ जाएगी कि ये हो क्या गया हमारे साथ, अब पता नहीं हम में से कौन है, अब कितने कम रह जाएंगे ना फिर तो जन्नती। तो یعنی ایک فرض کے طور پہ، کیونکہ فرض کیا جائے کہ کسی کا اگر حمل بھی ہو تو اس دن اس کے حمل گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے، ورنہ وہاں پہ تو نہ کوئی ولادت ہے نہ کوئی حمل ہے. اسی طرح دوسرا جو دوسری اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سب کو ہی پتا ہے کہ یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور زلزلہ آئے گا، تو بعض کہتے ہیں سور پھونکنے سے پہلے زلزلہ شروع ہوگا اور پھر سور پھونکا جائے گا پہلا، اور بعض کہتے ہیں کہ جو پہلا سور پھونکنا ہے اس کے ساتھ زلزلہ شروع ہوگا اور وہ زلزلہ اس قدر شدید ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ اس سے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور جو دودھ پلانے والیاں ان کے وہ بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی. اللہ اکبر. تو یہ بعض یعنی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی دنیا میں ہوگا یہ جو قیامت کے وقت کا زلزلہ، اور بعض حشر کے میدان کو اس کا سمجھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے تو تب یہ ہوگا. سمجھ آ گئی بات کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ پر کیا واللہ عالم، دونوں چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ یہ وہاں پہ تو قیامت کا زلزلہ آئے گا ہی، مگر وہ لوگ دیکھیں گے جو اس وقت موجود ہوں گے، لیکن جو اگر حشر کے میدان میں ایسا ہوتا ہے اور وہاں پہ تو یہ اناؤنسمنٹ تو یہ ہونی ہی ہے، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو سوچے پھر وہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جس وقت یہ کہا جائے گا ہر 9,999 تو وہ جو انسانیت کھڑی ہوگی اس پہ گزر کیا جائے گی، یہ سوچے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا بڑا یہ سلسلہ آنے والا ہے، قیامت ایسی آنے والی ہے، بھی اس کے بعد بھی اللہ اکبر کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے، اسی انسانیت کو ناس کو ہی خطاب ہے نا، لیکن انہی ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے، یہ واحد کا سیکھا آگے، من جو جادلو فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور علم بھی نہیں ہے اس کو، اتنا بڑا قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے، تو وہ سیریس ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے اللہ رسول کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں، اس کی قدرتوں کے بارے میں، اس کے کمالات کے بارے میں بحثیں ہو رہی، اور علم بھی نہیں ہے کوئی، یعنی بغیر علم کے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، کہ جب کوئی بات نہیں سمجھ تو اس کی چیز کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرنا، جو میں نے آپ کو بتایا جدال کون سا ہے، اس دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرنا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا بس وہی صحیح ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ تو بہت کامن ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں چھیڑ کے، ایسے موضوعات چھیڑ کے پھر لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس زمانے میں تو ایسے لوگ تھے، ابو جہل، نظر بن حارث اور اس طرح کے لوگ تھے، آج کے وقت میں بھی ہیں ایسے لوگ. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی. یہ ظاہری بات ہے، یہ چیزیں شیطان ذہن کے اندر ڈالتا ہے اور شیطان کے پیچھے ہی چلنے والے ہوتے ہیں، اور شیطان کے پیچھے چلتے چلتے دور نکل جاتے ہیں. اور یہ شیطان کون ہے؟ خود، کہ یہ خود سرکش ہے، یہ خود بہت دور نکلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے. اور یہاں پہ دیکھیں، ایک تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے تو ہمیں شیطان کا پتہ ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو بڑا شر پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں ایسی ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کو باتیں سلجھاتے ہیں، دوسرے شیطان بھی ڈال رہے ہوتے ہیں جو جن ہیں، تو یہ بحثیں کرتے ہیں اور یہ اللہ کی قدرتوں کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کی طاقت کے اوپر، اس کی صفات کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، جیسے ان کو سب کچھ پتا ہے، حالانکہ ان کو کچھ علم نہیں ہے. شرک کی सपोर्ट में बातें करते हैं। كتب علي أنه من تولاه فإنه يدله كتب لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے فیصلہ کر دیا ہے علیہ اس پر کس پر دو اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں ایک تو نمبر ون کہ وہ یہ جو بات پہلے ہی آئی ہے اسی کو اگر ہم لیں یہ جو بندہ جدال کر رہا ہے اس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا انہو من تولہو کہ بے شک وہ جو اس کو دوست بنائے گا فانہو یدلہو تو بے شک وہ اس کو یعنی گمراہ کر دے گا یعنی جو شخص یہ انکار کرتا ہے اللہ کا حشر کا قیامت کا اور اس میں جھگڑتا ہے اس کے متعلق لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور وہ کیا کرے گا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وہ لوگوں کو عذابِ سعیر کی طرف رہنمائی کرے گا جو بھی اس کے ساتھ اس سے دوستی رکھتا ہے اس کو اور دوسرا بھی اس کا معنی سملر ہی ہے کہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ انہو من تولاہو جو بھی دوست بنائے گا اس کو کس کو ہو کی ضمیر کی اصل بات ہے نا اس کو دوست بنائے گا جس کا ذکر پہلے پچھلی آیت میں آ گیا کہ جو جدال کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے دوستی کی ایسے بندے کے ساتھ اب یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ تو وہ اس کو بھٹکا دے گا وہ یہ جو ایسا آدمی جو جدال کر رہا ہے نا یہ اس بندے کو بھٹکا دے گا اپنے دوست کو بھٹکا دے گا صحیح راستے سے وَيَهْدِيهِ اور ہدایت دے گا اب اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی اور یہ ہدایت کس طرف کی دے گا یہ بھی ہدایت دیتا ہے یہ بھی گائیڈ کرتا ہے یعنی یہ کس طرف گائیڈ کرے گا الی عذاب السعیر جلنے کے عذاب کی طرف اپنے دوست کو لے جائے گا دیکھ لیا آپ نے کہ جب ایسے لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے تو کوئی خیر نہیں ملنی پھر یہ حال ہوگا کہ وہ بھی ایک راستہ دکھائے گا مگر وہ آگ کی طرف کا راستہ دکھائے گا بعض دفعہ لوگ دوستیاں کرتے ہوئے ساتھ ڈھونڈتے ہوئے صحبتیں تلاش کرنے میں یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ بندے کا عقیدہ اس کا عمل اس کا کردار اور یہ کیا چیز ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے یہ فیشنیبل کتنا ہے اس کے پاس کرسی پوزیشن کون سی ہے اس کے ساتھ دوستیاں کرو اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے مرے چلے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جو اس شر پسند کے ساتھ دوستی کرے گا جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ بھٹکا ہوا خود بھی ہے وہ خود جدال کرتا پھرتا وہ تمہیں بھی بھٹکا دے گا وہ تمہیں جلنے کے عذاب کی طرح رہنمائی کرے گا اسی لیے بعض دفعہ لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں اس کے بعد فلانے کے ساتھ دوستی ہوئی یہ میں سچ بات آپ کو بتا رہی ہوں کے ساتھ دوستی ہوئی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے پھر اس کے بعد اب یہ وہ کرتا تھا پہلے حدیث کا انکار اب اس نے بھی حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا پہلے وہ عذاب قبر کا انکار کرتا تھا اب اس نے بھی کرنا شروع کر دیا پہلے وہ ان چیزوں کو مذاق میں لیتا تھا اب یہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کیا آپ کے سامنے نہیں ایسی مثالیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہے جو یہ اس طرح کے جدال کرتے ہیں نا یعنی اتنے اگریسو ہوتے ہیں ایسے لوگ اور بغیر علم کے بس بولے جائیں گے بحث کیے جائیں گے وہ تو خود بھی شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہ اس کو بھی بھٹکا دیتے ہیں تو اس کا ایک معنی تو یہ تھا کہ جو یہ خود بھی کیا ہے یہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بس گمراہ کرتے رہیں اور دوزخ کی طرف لے کر جاتے رہیں جو یہ جدال کرتے ہیں اور یہ دوسرے اپنے دوست کو بھی اسی طرف کو لے کر جاتے ہیں और वो शैतान भी इनको इस शैतान के साथ क्योंकि फॉलोअर होते हैं, तो शैतान इनको गुमराह कर देता है क्योंकि ये शैतान को फॉलो करते हैं, तो उसके जब साथ दोस्त बनते हैं तो वो इनको भटका देता है और इनको अजाब की तरफ ले जाता है। जो शैतान के साथ दोस्ती करेगा तो दोनों की तरफ जमीर जा सकती ना, हु की जमीर दोस्त बनाएगा उसको किसको, शैतान को, ये भी हो सकती है। माना जो बदलने की जो मैंने आपको दो तफसीरें बताई ना, उसको आप इस तरह से समझ लें कि हु की जमीर की वजह से जो शैतान को दोस्त बनाएगा तो शैतान उसको भटका देगा और उसको रहनुमाई करेगा जलने के अजाब की तरफ। दूसरा माना क्या, जो ज्यादा मुफसरीन ने बयान किया है उसको आप समझ लें कि जो इस बंदे को दोस्त बनाएगा, जो जिदाल करता है, जो खुद फॉलो कर रहा है शैतान को, तो सोचो फिर इसकी दोस्ती कहाँ ले जाएगी। तो हु की जमीर इस बंदे की तरफ जा रही है जो जिदाल करता है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अब देखो फिर से दोबारा पूरी इंसानियत को खिताब है, तमाम इंसानों, ए इंसानों सुन लो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है दोबारा जी उठने में, अगर तुम कहते हो कोई क्यामत नहीं है, कोई दोबारा जिंदा होना नहीं है, आज अक्सरियत इंसानियत की आप बाहर निकल के पूछे, इवन जो अपने आप को कहते हैं ना हम क्रिश्चियन हैं या हम ये हैं, ये भी आज इनकारी हो चुके हैं कयामत के, इनकारी हैं। नहीं 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 इस तरह नहीं है, बस ये दुनिया में जो मिल जाता है यही है बस, अगर किसी को यहीं पे जन्नत मिल जाती है, यहीं जहन्नुम, या फिर कह देंगे कि बहुत ही कुछ पक्के अपने मजहब के होंगे तो कहेंगे बस वो तो जीसस हमारे सिंस ले लेंगे और हम तो बस वहां पे बख्शे बख्शाए पहुंचेंगे। तो यानी सारा इन्होंने उलट दिया है इस चीज को। तो कॉन्सेप्ट किसी का भी सही नहीं है, अव्वल तो वैसे ही मानते नहीं है, और अगर माने तो फिर वो इस तरह की तावीलें कर लेते। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो कहते हैं कि हमने कभी खड़े होना ही नहीं, कयामत कभी आनी ही नहीं, अगर क्यामत आएगी सब खत्म हो जाएगा, दोबारा जी नहीं उठना, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को खिताब करके फरमाया कि अगर तुम शक में हो ना दोबारा जी उठने में, तो दो इस चीज के प्रूफ दिए हैं, दो एग्जाम्पल्स के साथ प्रूफ किया है कि ये ना कभी समझना कि अल्लाह कैसे खड़ा करेगा, कैसे दोबारा जिंदा करेगा, जरा सोचो। फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, वो रब तो वो है कि हमने तो फरमाया हमने तो तुम्हें पैदा किया मट्टी से। मट्टी क्या होती है, वो भी तो डेड चीज है और तुम जिंदा खड़े बड़े हो। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया था, और आम आदमी भी, आम इंसान भी पैदा कैसे होते हैं, जो नुतफे से पैदा हुआ तो नुतफा किधर से पैदा हुआ, वो भी तो मट्टी में से निकलने वाली चीजों से ही गिजा बनी उसकी और उसी से नुतफा भी बना है। तो मिन तुराबिन मट्टी से, थुम्मा मिन नुतफातिन फिर नुतफे से, मट्टी में से गिजा निकली उससे नुतफा बना, और नुतफा क्या है, बिल्कुल डेड चीज है, तुम देखते नहीं तुम किससे पैदा हुए, पानी की उस हकीर बूंद से जिसको इंसान नापाक समझता है उससे तुम पैदा हुए हो। सुम्मा मिन आलाकातिन फिर आलाका से, खून की फुटकी से, जो मुअल्लक है, आलाका मुअल्लक से आप समझ लेना लटकी हुई, और आप देखते हैं लीच के लिए भी अलका का लफ्ज आता है, वो जो लटकी हुई है ऐसे क्लिंग हुई हुई है, और वो रहमे मादर में जो जो बच्चा तो नहीं कह सकते, वो जो भी उसको कह सकते हैं खून का पुटकी सी है, वो भी यूट्रस में इसी तरह चिपकी होती, क्लिंग हुई होती है जैसे लीच है। अब तो इन्होंने तस्वीरें देख के दिखाया तो वो वाकई ऐसे लगता है कि लीच है चिपकी हुई। उस जमाने में कौन सा तस्वीरें थी जो माँ के पेट की अल्ट्रासाउंड और ये चीजें बता देती कि कैसा होता है इंसान इस स्टेज पे। तो ये स्टेजेस हैं रहमे मादर में इंसान के, वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे। पहले नुतफा, नंबर टू आलाका बना, लीच की तरह तुम क्लिंग हो गए वहां पे। उस वक्त माँ क्या कर सकती है, माँ को तो कभी पता भी नहीं होता कि मेरे पेट में ये बच्चा बन रहा है, उसका जोर तो बाद की बात है कि उसका क्या जोर लगेगा या क्या उसके अंदर उसका कितना हाथ है, उसको तो बाज दफा यही नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये कोई वजूद परवरिश पा रहा है, बहुत बाद में पता चलता। तो मिन अलकातिन सुम्मा मिन मुदगातिन फिर एक गोश्त के लोथड़े से, ये अब तीसरा स्टेज क्या आ गया, गोश्त का लोट तड़ा। और हर एक जगह पे बता दिखाया जा रहा है, नुतफे को देख लो, अलाका को देख लो, मुदगात को देख लो, इनमें से कहीं पे भी तुम्हें नजर आता है किसी में भी बड़ा जोर है, पावर है, उठ के खड़ा हो जाए और बातें करे और झगड़े करे और ये करे। हाँ, कितना बेबस है उस वक्त इंसान। क्या एक गोश की, आप चिकन की बोटी को अपने हाथ पे रख के देख लेना, उसकी क्या हैसियत है। सोचना फिर कि कभी मैं भी ऐसी थी ना, गोश का लोथड़ा ही था ना। और मुदगा खास तौर पे ऐसे गोश्त की बोटी को कहते हैं जो चबा के थूक दिया गया हो। तो चबा के, कभी बोटी को थूके कोई तो देखा है, 2-3 दफा चबाया और उसके बाद तो कैसी वो उसकी शक्ल होती है, कितनी भद्दी और बुरी, वो तो बेशकल ही हो गया, बेढंगा सा, उस तरह को कहते मुदगा। उसकी शक्ल क्या होती है, वो थे तुम। अल्लाह हु अकबर, इंसान तू अपने आप को देख तो सही इस आईने में। आज तो आपकी साइंस भी आपको पूरी पूरी तस्वीरें ये दिखा देती है इन चीजों की, कभी उनको देख के ही अपने आप को पहचानने के मैं क्या थी। तो कैसे बदशक्ल थे तुम, चबाने से तो और भी जैसे बदशक्ल हो जाती है ना चीज। एक पे बोटी सरी सालिम हो, शोरबे में पड़ी हुई, उसकी फिर कोई शक्ल होती है, एक जिस 4-6 दफा चबा के ऐसे फेंकी हो, कितनी गंदी लगती है, डिफॉर्म्ड लगती है, वो थे तुम मुदहा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मुखल्लकतिन व गैरी मुखल्लका, फिर या तो सूरत दी गई या सूरत नहीं दी गई, यानी फिर उसके बाद जब इस स्टेज से गुजर जाता है इंसान, एक बेनक्शा बेसूरत सा बेढंगा सा, अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम जिसको चाहें फिर सूरत दे दें और जिसको चाहें कि फिर बेसूरत ही खत्म हो, यानी जिसको चाहें फिर एक शक्ल दे दी अल्लाह ताला ने, फिर उसको दुनिया में आने के लिए एक फैसला कर दिया, और जिसको चाहा बेनक्शा कर दिया, यानी वो मिस कैरेज हो गया, खत्म हो गया वहीं पे, उसका वो आगे वजूद नहीं बढ़ा। और एक हदीस से जो बुखारी और मुस्लिम की है, आपको बात और वाजे हो जाएगी कि बुखारी और मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक की पैदाइश उसके माँ के पेट में 40 रात तक जमा होती है, फिर 40 दिन तक खून बस्ता की सूरत रहती है, यानी जमा हुआ खून जैसे होते हैं ना, 40 डेज फिर उस सूरत में रहते हैं, फिर 40 दिन तक गोश्त के लोथड़े की शक्ल रहती है, यानी मुदगा की शक्ल रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने हो गए, 120 डेज, यानी 4 महीने। फिर फरिश्ते को 4 चीजें लिख देने का हुक्म दे के भेजा जाता है, रिस्क, अमल, अजल यानी उसकी मौत, और नेक बख्त है या खुशबख्त है, ये लिख दिया जाता है। फिर उसमें रूह फूंकी जाती है, यानी अब पता चलता है ना मुखल्लका है या फिर गैर मुखल्लका। तो अगर तो मुखल्लका है तो फिर अब इसका मतलब है कि आगे वो बढ़ेगा, अगर गैर मुखल्लका है तो फिर अब खत्म हो जाता है। अब्दुल्ला फरमाते हैं, नुतफे के रहम में ठहरते ही फरिश्ता पूछता है, ए अल्लाह ये मखलूक होगा या नहीं, यानी जिसको हम कहते हैं ना मुखल्लका या गैर मुखल्लका, मखलूक होगा यानी इसकी आगे तखलीक होगी या नहीं, अगर इनकार हुआ तो वो जमता ही नहीं है, खून की शक्ल में रहम उसे खारिज कर देता है, जिसको हम मिस कैरेज कहते हैं, वो फिर सारा ब्लड निकल जाता, और अगर हुक्म मिला कि इसकी पैदाइश की जाएगी तो फिर फरिश्ता पूछता है लड़का होगा या लड़की, जब भी तो आप फिर 5th मंथ में जाके फिर उसका पता करवाते हैं कि क्या है, नेक होगा या बद, मौत क्या है, कहाँ मरेगा, ये सारी चीजें ना। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला उस वक़्त ही फैसला फरमा देते हैं। और फिर ये भी इस रिवायत में आता है कि नुतफे से पूछा जाता है तेरा रब कौन है, वो कहता है अल्लाह। पूछा जाता है राज़िक कौन है, कहता है अल्लाह। फिर फरिश्ते से कहा जाता है तू जा और असल किताब में जाके देख ले, वहीं उसका सारा हाल मिल जाएगा। फिर वो पैदा किया जाता है, लिखी हुई जिंदगी गुजारता है, मुकद्दर का रिस्क पाता है, मुकर्रर जगह पे जहां जहां अल्लाह ने लिखा होता है कि इसके पैर पड़ने, वहां चलता फिरता है। फिर मौत आती है और दफन किया जाता है, और जहां दफन होना मुकद्दर होता है, उसका अल्लाह ने किताब में लिख दिया होता है, वहां वो दफन होता है। फिर आमिर रहमतुल्लाह अलैह ने यही आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह अकबर। यानी इंसान पर सोचता है ना कि देखो जी मरना नहीं था, इसने जल्दी मर गया, या फिर इस वहां ना जाता तो ना मरता, ये ना होता तो मेरा रिस्क कितना हो जाता। रिस्क भी मुकर्रर, तेरी मौत भी मुकर्रर, तूने जिधर जिधर जाना है वो भी मुकर्रर, तेरा तो सब कुछ ही मुकर्रर है। तू कितना बेबस है इंसान, तू कितना बेबस है और बना क्या फिरता है? ये भी नहीं, अपने ऊपर इतना बस भी नहीं है कि अपने आप को पूरा मुकम्मल ही कर ले। वो माँ भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि अब ये बच्चा पैदा हो जाए, उसके हाथ में भी नहीं है। सोचे अब वो भी नहीं कुछ कर सकती कि उसको बना दे, पूरी सूरत दे दे, हालांकि पेट उसी का है। बेबसी की इंतहा देखे। ली नुबई ना लकुम, ताकि वो बयान करे तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें एक्सप्लेन कर दे वाह ये बातें, ये तुम्हें खोल के बता दे। उससे जब पैदा होता है, देखो कहाँ एक डेड चीज और कहाँ एक लिविंग इंसान पैदा हो जाता है, हाथ पैर मारता है कैसे, इससे नहीं अंदाजा होता कि जो रब इस तरह मुर्दे से जिंदगी निकाल सकता है, वही कयामत में भी मुर्दों को जिंदा करके खड़ा कर देगा। फिर उसके बाद फरमाया हुआ नुकर्रु फिल अरहामी मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, और हम ठहराते हैं रहमों में जो हम चाहते हैं, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। हम जब तक हम चाहते हैं उसको ठहराते हैं। इसी वजह से देखें आप, कोई बच्चा 7 महीने पे पैदा हो जाता है, कोई 8 महीने पे, कोई 9 महीने पे, कोई 10 महीने पे भी जाके पैदा होते, और उन्होंने आपको एक डेट दी होती है, उससे पता नहीं है कितना पहले पैदा हो जाए या वो गुजर भी जाए और उसके बाद हो, उसमें भी किसी का बस नहीं है और किसी को इल्म नहीं होता कि कौन सा टाइम आ जाए और करार कौन देता है। नुकर्रु फिल अरहाम, हम ठहराते हैं रहमों में। अब माँ कभी सीढ़ियां चढ़ रही है, कभी चल रही है, कभी लेट रही है, कभी उठ रही है, वो बच्चा ठहरा हुआ है पेट में, कौन उसको करार दे रहा है वहां पे। सुम्मा नुखरीजु कुम, अब तो आपसे बात हो रही है डायरेक्ट, हर एक यानी अल्लाह ताला मुझसे आपसे हर एक से डायरेक्टली खिताब फरमा रहे हैं कि हम ये ना सोचे अच्छा एक बच्चा होता है, अच्छा हम ये सोचें कि ये मैं थी, मैं मेरी बात हो रही है, अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं मैंने तुमको पैदा किया, तुमको इस तरह ठहराया रहम में। सुम्मा नुखरीजु कुम, फिर निकाल लाते हैं तुमको, तिफलन बच्चा, सुम्मा ली तबलूहु अशुद्धकुम, फिर ताकि तुम पहुंचो अपने कमाल को, अपनी पूरी जवानी को। तुम्हें बच्चे के तौर पे, बच्चे की शक्ल में दुनिया में भेजते हैं ताकि अब तुम फिर अपनी जवानी, अपने कमाल, अपने उरूज को, अपनी मेच्योरिटी की एज को पाओ। हाँ देखें, अब माँ के पेट में तो मोहताज था ही, बेबस था ही, दुनिया में आके कौन सा वो बड़ा जोरावर हो गया, इतना मोहताज, इतना मोहताज कि ना अपने खाने के ऊपर कादिर, ना पीने पे कादिर, ना कुछ बताने पे कुदरत रखता है। कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, सर्दी लग रही है, गीला लग रहा है, क्या हो रहा है उसको, क्या कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, चल के जा नहीं सकता, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, कुछ पकड़ नहीं सकता हाथ में के थाम ले, वो भी अगर कुछ पिलाना है खिलाना है तो वो भी कोई खिलाए। तुम इतने बेबस होते हो, उस वक्त कौन है जो माँ बाप के दिलों में मोहब्बत डाल देता है कि वो इतने बेबस इंसान को, इतने बेबस एक क्रिएचर को सीने से लगाते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, उसके लिए अपनी नींदें हराम करते हैं, रात की नींद हराम, दिन का भी कोई काम नहीं कर सकते, एक बच्चा होता है और सारा घर उसकी निगहदाश्त कर रहा होता है, दादी भी और माँ भी और बाप भी और सारे, वो एक बच्चे के पीछे सारे घूम रहे होते हैं। कौन है जो ये कराता है? माँ के पेट की अंधेरी कोठड़ी में तुम्हें कौन परवरिश देता है? रिस्क तो माँ नहीं खिला रही होती, माँ तो खुद खाती है बस, तुम तक कौन पहुंचाता है? ये तुम्हारा मुंह पीछे की तरफ को अल्लाह ताला रखता है कि पेशाब पखाने और वो चीजें तुम्हें बॉदर ना करें, माँ के पेट में वे तीन अंधेरों के अंदर रखता है, माँ के पेट के अंधेरे ना तुम्हें तंग करें। फिर वहां पे करवटें कौन दिलाता है? अच्छा, माँ की तो ये भी बस नहीं होती कि बच्चे को करवट दिलाए, बच्चे की मूवमेंट हो रही होती है अंदर, कौन करवट दिला रहा होता? खुद सोचे कि कभी भी हम भी तो इस पोजीशन में थे, क्या थे हम उस वक्त, इतने बेबस। आज बातें बहुत बड़ी बड़ी करनी आती है ना, बात अब अल्लाह ने जुबान दे दी, दिमाग दे दिया, आंखें कान दे दिए, तो आज ये बातें करनी आ गई, अल्लाह ने ये क्यों किया, उसके साथ वो क्यों किया, ये तो बड़ा जुल्म हो गया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, फिर अल्लाह कहाँ है अगर ये हो रहा है। आज तुम्हें बड़ी बातें करनी आ गई है, सोचो तो सही तुम थे क्या उस वक्त? पूछते ना अल्लाह कहाँ है और अल्लाह ने ये क्यों किया और वो क्यों किया, देखो तो सही तुम क्या चीज थे। तुम्हें तो कभी सर ही उठाना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी अल्लाह की तुम नाफरमानी नहीं कर सकते, एक पल के लिए। देखिए, आपको कोई नौकरी दिला देता है, अच्छा चले मैं आपको इस तरह बताती हूँ, नौकरी हो, सिर्फ नौकरी करने की एक बात नहीं, मिसाल के तौर पे आप जा रहे थे तो आपने किसी को देखा, कोई होमलेस पड़ा हुआ फुटपाथ पे, आपको उसको उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं, कोई अपार्टमेंट देखते हैं वहां पे, अब उस पे बेचारे ना पैसे हैं, ना उसके पास कोई क्रेडिट है, ना कुछ है, आप उसकी जगह लीज साइन करते हैं, आप उसको घर में सारा फर्निश करके देते हैं, ग्रोसरी लेकर आते हैं, उसके साथ जाके उसका फ्रिज भरते हैं, उसकी सारी चीजें जरूरत की, पूरा अपार्टमेंट सजा के देते हैं, उसको गाड़ी की चाबी हाथ में देते हैं, ये लोग गाड़ी, ताकि तुम्हें अब कोई मोहताजी ना हो, और देखो तुम्हारी नौकरी का भी मैंने इंतजाम कर दिया, कल से तुम नौकरी के ऊपर भी जाओगे, और मैंने तुम्हारा एक साल का किराया भी भर दिया इस अपार्टमेंट का, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो और तुम्हें ये भी ना फिक्र हो कि तुमने अपार्टमेंट का किराया देना है या कुछ है। सारा कुछ करके अब उसके बाद मसलन आप चले गए, एक साल, दो साल, तीन साल गुजर गए, फिर एक दिन अचानक से आप उस शहर में वापस जाते हैं और आप उसको कॉल करते हैं कि भई आप कहाँ हैं, क्या हैं, अच्छा मैं ज़रा यहाँ पे इस जगह पे पहुँचा हूँ, आप मुझे लेने के लिए आ जाएं, मेरी फ्लाइट मिस हो गई अगली, तो आप मुझे लेने आ सकते हैं। वो आगे से कहे, लो जी मैं तो इतना बिजी हूँ, मेरी तो नौकरी है और आप मेरे पास कहाँ टाइम है और ये है और वो है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? जस्ट इमेजिन करें कि किसी के साथ आप ऐसा करें, आपको कैसा लगेगा? ये तो सिर्फ नौकरी दिलाना या अपार्टमेंट या ग्रोसरी कर देना एक दफा और या इस तरह की कोई चीज है। सोचें, जिस वक्त हम कुछ भी नहीं था, हमारा कोई वजूद नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं, कोई जानता ही नहीं हम कौन है, ये जो आज माँ बाप प्यार कर रहे हैं वो इसलिए हम एक वजूद के अंदर है ना, जिस वक्त हम कुछ भी नहीं थे, बेनामो निशान, माँ बाप भी नहीं जानते थे कौन है, कोई उनको हमदर्दी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई कुछ, लेकिन हम थे ही नहीं, हमारा रब उस वक्त भी हमें जानता था, हम रूह की शक्ल में थे, उस वक्त भी हमें पहचानता था, फिर उसने किधर हमें डाला, फिर हमें बनाया, संवारा, हमारी ये शक्लें बनाई, निक सुख से तुम्हें प्यार से बनाया, एक एक चीज तुम्हारी संवारी है, एक एक चीज निक सुख से बनाया, ये कुरान कहता है, री डेलिकेटली तुम्हारी जो फिनिशिंग है ना वो सारी की है, कितना प्यारा बेबी होता है, सबको ही प्यार आता है, जो न्यूबॉर्न बेबी हो देख के सारे उठाते हैं उसको, कितना प्यारा होता है वो, क्या था, बोटी था एक, अब वो बोटी की शक्ल में होता तो सारे घिन खाते, नुतफे की शक्ल में होता तो करते, अरे अल्लाह, नहीं तुझे सूरत दे दी कि अब सबको प्यार आने लगा तेरे ऊपर, ये किसने सूरत दी? कभी सोचा उस मोहसिन का एहसान अपने ऊपर नहीं मानते? फिर उसके बाद तुम्हें पाला पोसा, माँ की छातियों से दूध जारी कर दिया। यार तुम सॉलिड्स तो खा नहीं सकते थे, अब दूध पी के अपना पेट भरो। हाँ तो कायनात को तुम्हारे लिए बिछा दिया, सूरज तुम्हारे लिए चमकाया, चांद तुम्हारे लिए चमकाया, सितारे बनाए, दिन और रात का निजाम चलाया, कहीं सब्जियां, कहीं गोश्त, कहीं क्या क्या स्पाइसेस हैं जो तुम्हारी लज्जतों के लिए पैदा फरमा दिए। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पालता 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 जब बड़ा कर दिया, तुम्हें चलने फिरने की इतनी ताकत दे दी, खड़े होना शुरू हुए, भागने शुरू हुए, चीजें पकड़ने शुरू हो गए। पहले तो नजर भी नहीं आता था, ये भी नहीं नजर आती थी, आवाजें आती बस, शक्लें तो नजर भी नहीं आती, बेबीज को नजर भी नहीं आता था तुम्हें। उसके बाद फिर नजर आने लगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम्हें चीजों की पहचान होने लगी, फिर तुम तोतली जुबान से तुम्हें तुम्हें चीजें तुम्हारी जुबान से अदा कराने लगा वो रब। फिर उसके बाद तुम्हें बोलने की ताकत उसने दे दी कि तुम्हें सिखा दिया कैसे बोलना है। फिर तुम्हें पालता बढ़ाता और बड़ा करता चला गया। तुम पूरे सुमारी तबलुगु अशुद्धकुम, अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए। फिर उसके बाद तुम खड़े होके कहते हो, अब इतने सालों के बाद अब वो रब तुम्हें कहता है, अब तुम बालिग हो गए हो, अब वो रब तुम्हें कहता है ये मेरा हुक्म है, ये करना और ये ना करना। तुम कहते हो लो ये क्या बात हुई, ये कौन सी बातें हैं, ये नहीं आज हमें समझ आती, ये नहीं हमसे होता, ये तो बड़ा मुश्किल है। जब आप कहने लगे ना किसी को कि कोई बड़ा मतलब भी है, या बड़े ये बच्चे बात नहीं सुनते, बड़े नाफरमान हैं, कितने बदतमीज हैं, या बच्चों को जब अपने एहसान जिताने लगे ना, तुमने देखा मैंने तुम्हारे लिए ये किया ये किया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या उठाया, आज तुम हमें ये कह रहे हो, तो उससे पहले जरा खुद को भी रख के देखा करें, मैंने तो इसके लिए क्या किया होगा जो मेरे रब ने मेरे लिए किया, और मैं उसको कैसे जवाब देती हूँ। जब उसका कोई हुक्म मेरे सामने आता है तो मैं क्या कहती हूँ, लबैक समय ना आता ना, या मुझसे नहीं होता। और जब किसी को मतलब ही कहने लगे ना, तो जरा देख लिया करें कि मैं खुद कितनी मतलबी हूँ, जो अल्लाह के पास तभी जाती है जब कोई मुश्किल होती है, और जब नहीं मुश्किल होती तो फिर अल्लाह याद ही नहीं रहता मुझे। कोई क्या नमक हरामी करेगा जितनी कि इंसान खुद अपने रब के सामने नमक हरामी करता है। कोई क्या मतलबी होगा जितने कि हम मतलबी हैं, और क्या हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करेंगे जितने कि हम अपने रब के नाफरमान हैं। फिर तुम उस उम्र को पहुंच जाते हो जो जवानी की उम्र है, यानी लंबे चौड़े ताकतवर जोरावर बन जाते हो। फिर वह मिनकुम मन युतवफ्फा, इनमें इन सारे स्टेजेस में आप देखेंगे कहीं पे भी नहीं इंसान का अपना बस, बेबसी है। हमने वो नहीं, अगर वो कोई लोग बचपन को ही हमेशा याद करते रहते, लेकिन देखें बचपन गुजर जाता है, बचपन अगर उनको बचपन इतना अच्छा लगता था तो उसी में रहते, लेकिन उनका बस नहीं था, बड़े हो गए अब बस नहीं है वापस चले जाएं, याद करके रोते हैं लेकिन बस नहीं है कि वापस जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस इसी जवानी में 30, 40, 50 ईयर की एज में किसी को अल्लाह फौत कर देता, वो भी वो जवानी में बड़ा मगरूर हो रहा था, मैं तो बड़ा जवान और मैं तो बड़ा ये, कि उसके जाने का दिन आ जाता। व मिनकुम मन युरदु इला अर्दलिल उमरी, और तुम में से कोई ऐसा भी है जिसको अल्लाह चाहे जो लौटा दिया जाता है रजील उम्र की तरफ, यानी वो मरता नहीं है, 40 50 में भी नहीं मरता, उसकी रजील उम्र आ जाती है, यानी उम्र बढ़ती जाती है। अच्छा अब भी नहीं बस है कि जो है ना, चलो मेरे दिल चाहता है मैं जवान ही रहूं। किसका नहीं दिल चाहता, कितने पापड़ बेलते हैं जवान रहने के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, इतने पता नहीं क्या क्या कराते हैं अपने आप को, टीके लगवाते हैं और क्या क्या गोलियां और क्या क्या अपनी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बेचारे फिर भी नहीं जवान रह पाते। और देखो कितनी फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर और पता नहीं क्या स्टार सेलिब्रिटियां, क्या क्या उनको कहते थे, आज देखो कितने कितने बूढ़े ज़ईफ़ हो जाते हैं, उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते, झुर्रियों से भरे हुए बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गए। रजील उम्र, ऐसी रजील उम्र पे अल्लाह ताला पहुंचा देता है, लिकई ला यालमा मिन बाद इल्म शैया, इंसान ये है तेरी कहानी। फिर वो ऐसी रजील उम्र पे पहुंच जाते हैं कि जो ना जाने इल्म के बाद कुछ भी, जानने के बाद ला इल्म हो गए। पहले इल्म था या जवानी थी, बड़ा कुछ जानते थे, उसके बाद यही नहीं याद रहता कभी कि मेरे बच्चों के अपनों के नाम क्या है, अपने ही बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपनी और बातें भूल जाते हैं, कई खाना खाया कि नहीं वो भी भूल जाते हैं। इस उम्र तक पहुंच जाता है इंसान, रजील उम्र, ये बिल्कुल ही इंसान का वो कहते हैं ना कि दिमाग चल जाता है, जिद करने लगता है बच्चों की तरह। और जैसे पहले था ना, जैसे समझ लें एक सर्कल जहां से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, गोल घूम के फिर वापस वहीं आ गया, ये है उम्र। यानी जब स्टार्ट किया था उस वक्त कुछ नहीं जानते थे ना, बच्चों वाली बातें, वो बुढ़ापे में जाके बच्चों वाली बातें, वापस अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया, सुभान अल्लाह। हालांकि खा वही गिजा रहा है, रह उसी एनवायरमेंट में रहा है, क्या चीज है तुम देखते नहीं, कोई ताकत है तुम्हारे ऊपर, पता नहीं चलता, समझ नहीं आती ये बात, वरना क्या नहीं तुम कर रहे। एक्सरसाइजें भी लोगों को करते देखा, बेस्ट गिजा भी खाते देखा, सब कुछ, वो अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकते, रजील उम्र नहीं रोक पाते, वो दिमाग से जो बातें निकल जा रही हैं और वो बच्चों वाली बातें करने लगा है। वो जो जवान लोग उनको कहते हैं कि आप बच्चों वाली बातें करने लगे, वो वाकई सही होता है, इंसान ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो अब आपको कुछ पता नहीं चलता, बच्चे ये कहने लगते हैं ना, आपको नहीं समझ, आपको नहीं पता, तो वो वाकई नहीं पता होता, इंसान एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है, ऐसी उम्र में चला जाता है, उसको वाकई बेइल्म हो जाता है इल्म के बाद। अब तो खैर बहुत जवानों को भी बच्चे यही कह देते हैं, लेकिन एक स्टेज आता है कि इंसान इतनी रजील उम्र पे आ जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है हमें, जो इतनी इम्पोर्टेंट है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल बुखल, बुखल तो समझते हैं ना, वाउज़ु बिका मिनल जुबन, वाउज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्दलिल उमर, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कि मैं रद्द कर दी जाऊं, यानी वापस लौटा दी जाऊं रसील उमर की तरफ। वाउज़ु बिका मिन फितनत दुनिया व अज़ाबिल कब्र, तो सारा कुछ ही इसमें आ गया। अब देखें रजील उमर से भी पनाह मांगी गई है कि अल्लाह ऐसी उम्र को ना पहुंचा देना जो नकारा उम्र हो, कि यानी इंसान के 5 6 7 भी बच्चे होते हैं, 10 बच्चे भी होते हैं, फिर भी एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते, एक माँ को उनसे संभाली नहीं जाती, इंसान ऐसी उम्र को पहुंच जाता है बिल्कुल नाकारा हो जाता है, बोझ बन जाता है, कोई रखने को तैयार नहीं होता। ये है इंसान की हकीकत, इंसान तेरी स्टोरी सारी अल्लाह ने बयान फरमा दी। इन सब स्टेजेस में एक चीज सिर्फ है कॉमन, तेरा रब तो तेरे साथ है हर जगह में, जब तू बेबस था मां के पेट में तब भी मां को चाहे तेरे से, उस वक्त कोई शगफ कोई वो नहीं था, अटैचमेंट कोई ऐसी नहीं थी, मुदगा था, तू अलका था, मां क्या करती तुझे देख के भी, उसने क्या करना था, ये क्या चीज है, ये मेरा बच्चा है, ये थोड़ी कहेगी, गोश का लोथड़ा ही कहेगी ना। उस वक्त भी तेरा रब था तेरे साथ, उस वक्त भी देखो पाल रहा है बढ़ा रहा है, जिस चीज को पाला जाए उसके साथ कितना प्यार होता है, इतना वो तुझसे प्यार करता है, फिर रहम में तुझे ठहराया, फिर तुझे दुनिया में लिख, ए तमाम देखे सारे में कितना है, क्या एक इंसान ही है, ए तमाम देखे हर स्टेज का एक तमाम है, कैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, ऊपर पीक पे पहुंच गया, एंड देन डाउन द हिल, एंड वी आर ऑल गोइंग डाउन द हिल नाउ। इक्का दुक्का कोई हम में से शायद होगा जो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सारे डाउन द हिल ही हैं। अब नीचे का सफर है हमारा, अब ऊपर का नहीं है, हम पीक अपनी देख चुके हैं, अब नीचे जा रहे हैं। अब नीचे ही जाना है, अब वापस ऊपर नहीं जा सकते। कौन है आप में से जो रिवर्स कर सके इस साइकिल को और कहे नहीं 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 मैं वापस जाऊंगी, मैंने नहीं आगे जाना। बेबस, तुम कितने बेबस हो। इंसान को ना ये बातें आजिज कर देती हैं, आजिज कर देती है। नहीं भी जो झुकना चाहता वो भी झुक जाता है। क्या हूं मैं, मेरी क्या हकीकत है, मैं किसी के रहमो करम पे हूं, किसी और के हाथों में हूं, और मैं जिसके हाथों में और जिसके रहमो करम पे हूं, मेरा उसी के साथ ताल्लुक सही नहीं है। मेरा एक एक स्टेज उसका मरहूने मिन्नत है, जहां चाहे खत्म कर दे, किसी स्टेज पे भी चाहे तो फना कर दे मुझे, फिर भी मैंने उससे ताल्लुक नहीं बनाया। और इंसानों से ताल्लुक बनाने में कितने बिछे चले जा रहे होते हैं, कितने उनके सामने चापलूसियां करते हैं, कितना उनके सामने अपने आप को गिरा देते हैं। कभी अपने रब से भी ताल्लुक बनाने की कोशिश करो। ये तुम्हारी स्टोरी सारी अल्लाह ताला ने बता दी। इस अपनी स्टोरी को बार बार पढ़ें और इसके हर स्टेज में खुद को तलाश करें कि मैं यहाँ पे कैसी थी और यहाँ पे कैसी थी और यहाँ पे कैसी हूं इस वक्त, और इसके बाद वाले मेरे फ्यूचर स्टेजेस क्या हैं। आइदर तो फौत हो जाऊंगी, नहीं तो अर्जल उमर की तरफ चली जाऊंगी। दोनों में से एक ही है ना, है ना, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कुछ कुछ फौत हो जाते हैं और कुछ अर्जल उमर की तरफ चले जाते हैं। इनमें से किसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं? आगे देखिए, सेकंड एग्जांपल। हाँ, वतरल अर्द हामिदतन, और तुम देखते हो जमीन को खुश्क है, बिल्कुल ऐसी बंजर पड़ी हुई है जमीन, बिल्कुल उसके अंदर डेड जैसे नजर आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? फ़ाइदा अंजलना अलैहल मा, फिर हमने उतारा इस पर पानी, एहतज़त ताजी हो गई, वरबत और उबरी भी हो गई, व अम्बतत और उगाई, मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, हर किस्म की रौनक की चीजें इसमें। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर पानी जब बारिश का बरसाया, वो लहलहाने भी लगी, उसमें से चीजें उगाई और रौनक हो गई हर तरफ, और इस तरह डेड से लाइफ की एग्जाम्पल। और आजकल हम देखते हैं विंटर है, बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं है कई दरख्तों पे, एक पत्ता भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वन। सुभान अल्लाह, वो कैसे खड़ा हुआ दरख्त, ये नहीं समझ आती कहां से गिजा ले रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं बाहर आएगी, पूरा पत्तों से भर गया, वो ये लाइफ कहां से आई। अल्लाह ताला दिखाता है कि देखो ये मैं ही हूं जो नुतफे से लेके मट्टी से कहां एक इंसान खड़ा कर देता हूं, और उसके बाद कैसे उसके हर स्टेज पे उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर उसी जगह पे ले आता हूं। कहीं तुम्हारा बस है? इससे क्या पता चलता है? इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जमीन की एग्जांपल देख लो, मैं कैसे डेड जमीन को जिंदा कर देता हूं। तो क्या तुम्हें डेड जब तुम हो गए तो तुम्हें जिंदा नहीं कर सकूंगा मैं? कैसे सोच सकते हो तुम? तुम कितना भी इनकार करो, हमने नहीं दोबारा जिंदा होना, तुम नहीं कर सकते। वो जो चाहे करे, ज़ालिका भी अन्नल्लाह हुवल हक, ये इसलिए कि वो रब हक है, यही ट्रूथ है, वो ही हक है, यानी जो रब की जात है वो हक है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जो भी इसमें झगड़ते हैं रब है कि नहीं, या उसकी वहदानियत के अंदर, या वो कैसे दोबारा जिंदा करेगा, वो ये बातें देख ले, इन एग्जांपल्स को देख ले। जितनी बातें हुई हैं इनके बाद तुम्हारा शक निकल जाना चाहिए, एक बात तो वाजे हो गई कि वो हक है। सिर्फ उसी पे ईमान रखो, उसी पे भरोसा करो, उसी का सहारा पकड़ो। अन्नहु युहयिल मौता, और ये बात वाजे हो गई कि वो जिंदा करेगा मुर्दों को। वह अन्नहु, ये जो मैं अभी बात कह रही थी, अल्लाह कुल्ली शैन कदीर, अल्लाह हम इस पे ईमान रखते हैं कि तू हर चीज करने पे कादिर है, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। हम एक गोश्त की बोटी को देख के कभी सोच ही नहीं सकते कि ये भी इंसान बन सकती है। हम एक स्पर्म को देख के ये सोच ही नहीं सकते कि ये एक इंसान बन सकता है, लेकिन तू अल्लाह कुल्ली शैन कदीर है, अल्लाह हमारा ये ईमान है। अब तो साईं सारी चीजें बताती है, वैसे हमें कभी कोई ये चीजें ना वो होती तो शायद हम कहते नहीं नहीं कैसे हो सकता, जैसे हर चीज पे एतराज, हर चीज के ऊपर कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेते हैं। तो लोगों ने कहना था ये कैसे हो सकता है, एक पानी से, एक गंदे पानी की बूंद से एक इंसान खड़ा हो जाए, ये कैसे हो सकता है। अब साइंस ने बता दी तो देखा किसी ने नहीं है बनते हुए इंसान को, यानी हम में से तो नहीं किसी ने देखा, साइंसदानों ने ही देखा हो, तो वो अब उसके ऊपर सबका बिलीफ है क्योंकि साइंस ने कह दिया। अल्लाह ताला बात फरमाता है कि वो आला कुल्ली शैन कदीर है, तो उस पे इंसान बिलीव नहीं करते। ये कभी दिल में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि पता नहीं जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क़यामत आएगी कि नहीं, नहीं आएगी। और कुरान में बार बार इसकी दलीलें हैं, देखो अल्लाह कैसे जिंदा करता है, देखो अल्लाह ने तुम्हें नहीं आज तक इस यहां तक पहुंचा दिया, ये तो देख रहे हो ना अपनी आंखों से, तो फिर इसमें क्यों नहीं ये तुम्हें यकीन आता कि अल्लाह ताला फिर दोबारा जब मट्टी में चले जाओगे तो फिर वहीं से जिंदा करके खड़ा कर देगा। पहले भी तो मट्टी से ही तुम्हें निकाला था। और याद रखो ये सारा इसलिए बताया, जालिका के अंदर आ गया कि ये सब चीजें, ये बातें सब तुम्हें किस लिए बताई है कि अल्लाह हु अल हक, ये यकीन कर लो। हक क्या होता है? ट्रूथ, सच्चाई, जो जो जिसको कोई जो जो शेकी ना हो, बिल्कुल उसको बिल्कुल सॉलिड बात हो। वह अन्ना हो यो ही मऊता, और वो जिंदा करता है मुर्दे को, वो जिंदा करेगा मुर्दों को, और वो अला कुल्ली शाइन कदीर है। और क्या, और क्या ये सारी बातें क्यों बताएंगे? अन्नसाता आतियां तुल्ला रही बफीहा, याद रखना क्यामत आएगी, आने वाली है, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है निकाल दो दिल से। क्यों इतना एम्फोसिस क्यों है, क्यामत आनी है, क्यामत आनी है, क्यामत आनी है? कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, ये डिप्रेशन हमें देने के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें अगर यकीन ही नहीं होगा कि एक दिन अल्लाह के पास लौटना है तो कैसे तुम उसकी तैयारी करोगे? अगर शक है ना, शक ना करना, क्योंकि शक जहां पे आ जाता है ना, अगर शक मुझे पड़ जाए पता नहीं कल मेरे मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, लो मैं क्यों खाम खा इतनी मेहनत करूं, मैं क्यों खाने बनाऊं, मैं क्यों ये करूं, और मुझे क्या पता आने भी हैं कि नहीं आने, ना आए तो मैं ऐसे ही इतनी मेहनत करूं। देखिए अब ये एक शक आ गया ना, तो वो सारी मेरी जो एफर्ट थी ना उसके अंदर एक, यानी अब वो उस तरह से नहीं रही, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी के अगर मुझे यकीन होता कि हाँ कल आनी है, कल उनकी फ्लाइट है, इतने बजे पहुंच रहे, मैंने फिर दिन रात लगा के तैयारी करनी थी। लेकिन जिस वक्त शक आता है आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। जब आपको शक पड़ गया ना कि क्यामत पता नहीं आएगी कि नहीं, उस वक्त जरूर आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। जितना ज्यादा आपके दिल में ये यकीन है ना कि आनी है और आनी है, उतनी ही आपके अमल के अंदर बेहतरी आएगी। इसलिए ये यकीन दिलाया गया है कुरान में। तो अन्नसात आतियतुन, सुभान अल्लाह, ये वर्ड भी इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। आतियतुन, आतियतुन इसम है, इसम फाइल, ठीक है। इसका माना है कि वो चीज जो के यानी इस वक्त हो रही है, इस वक्त ये यानी इस वक्त भी जारी है, इसम फाइल है ना, इस वक्त भी वो चीज इन प्रोसेस है, यानी। और आतियतुन क्या, इन प्रोसेस है कि वो आ रही है इस वक्त भी, यानी चल पड़ी हुई है। अब मैं किसी को फोन करूं, अच्छा आप कब आएंगे, वो कहते हैं हम रास्ते में हैं। अब इसका मतलब क्या है रास्ते में, मतलब अभी तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, चलो 15 में, 2 मिनट में भी आ सकते हैं, है ना। اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ راستے میں ہیں. سبحان اللہ، آن اٹس وے، راستے میں ہیں، چل چل پڑی بھی ہے، چل چکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں اور قیامت ایسے ہیں، اور اپنی دو انگلیاں جوڑ کے دکھائی تھی، ہے نا، جوڑ کے دکھائی تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی، یعنی اس کے بعد قیامت نہیں آنا ہے، قیامت کی پیشین گوئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اس کے بعد بس قیامت ہے. یہ تو وہ چل پڑی بھی ہے. اللہ اکبر، ہمارا حال کیا ہے؟ ان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہی اٹھائے گا جو بھی قبروں میں ہیں. اب یہ ساری یہ جو باتیں 6 اور 7 آیت میں ہیں نا، یہ پچھلی جو پوری بات ہماری ہوئی ہے 4 اور 5 آیت کے اندر، اس سارے کا کنکلوژن ہے کہ اس دونوں جو اگزامپلس کو سمجھ لینا، ان باتوں کو، اس کے بعد وہ یقین کر لے. نمبر 1، اللہ حق ہے. بغیر علم کے اس کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں نا، اللہ حق ہے، اور وہ ضرور زندہ کرے گا مردوں کو، اور وہ ہر چیز کرنے پہ قادر، اور قیامت چل پڑی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور زندہ کر دے گا جو قبروں میں ہے. یہ سب کنکلوژن ہے اس ساری بات کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، پھر وہی اسی بات کو اب دوبارہ کہا گیا کہ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، جبکہ اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کتاب منیر ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی بات ایسی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہو، اس کے اندر کوئی وحی کا علم ہے جس میں واضح بات ہے، اور وہ آپ کے سامنے پروف کے طور پہ رکھ دے، جی دیکھیں یہ میرے سامنے پروف ہے کہ کوئی اللہ کا شریک ہے، یا یہ میرے سامنے پروف ہے کہ قیامت نہیں آنی. اس نے ان باتوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے بارے میں آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، یا قیامت کے بارے میں، یا وہ، نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی ہوتی ہے کہ کسی رسول نے آ کے ان کو بتایا کوئی ایسی بات، یا نہ ان کے پاس کوئی بک ہے اللہ کی طرف سے آئی بھی جس کے اندر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے جو وہ دکھا دیں. کیسے کیوں کر رہے ہوتے ہیں پھر؟ بس یہاں تو سنی سنائی باتوں پہ جھگڑے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تکبر ہوتا ہے تو جھگڑے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے لوگوں سے جب بحثیں کرتے ہیں نا. آپ لوگ بھی ضرور کبھی نہ کبھی انسان کا واسطہ پڑتا ہے کہ کوئی چیز کا انکار کرتے جائیں گے. اب آپ پوچھیں گے آپ کے بھی کوئی اس کی دلیل لے کر آئیں؟ نہیں، دلیل کوئی ہے نہیں، بس کہاں سے پتا چلا؟ آئیں بائیں شائیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، کوئی حدیث لے کر آؤ، کوئی قرآن کی آیت لے کر آؤ، کوئی نہیں، وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، قرآن ساری زندگی پڑھا نہیں ہے، کوئی حدیث کا علم نہیں ہے، بغیر علم کے باتیں کیے جاتے ہوا میں. وہ تو اس زمانے میں تو وہ مشرکین یہ کرتے تھے، آج کون سے کم ہے جو آج اپنے آپ کو بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ زیادہ ہی بحثیں کرتے ہیں. بےچارے ان پڑھ ہیں، وہ نہیں اتنی بحثیں کرتے جی. وہ سمجھتے نا ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو دنیاوی 4 کتابیں پڑھنے سے، کوئی پی ایچ ڈی ماسٹرز کر لینے سے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے شروع جاتے ہیں کہ اب اللہ کے اوپر بھی باتیں بیان کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہوں گی صرف یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 4 یہ پڑھ لیں، اپنی حقیقت دیکھ لیں پہلے. ثانی آیت فیہ لیضل عن سبیل اللہ، اور پھر صرف بحث ہی نہیں کرتے، موڑنے والا یہ آدمی من الناس ہے نا، لوگوں میں سے کوئی ایک ہے، من ایک سنگلر کی بات ہو رہی ہے، یہ جگڑتا ہے. دیکھو کیسا ہے یہ، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی، یہ جھگڑے کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، علم ہے نہیں، اور اس کے بعد کیا موڑنے والا آیت فیہ، اپنی سائڈ موڑ لیتا ہے. یعنی سائیڈ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لیتا ہے اپنا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ لیدل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. صرف خود نہیں بحثیں ویسے کرتا، دوسروں کو بھی جا کے پھر ان کے بھی ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، پھر ان کو بھی ڈاؤٹ فل بناتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. یعنی چین سے نہیں پھر بیٹھنا، وہ اس چیز کا ایجنٹ بن جاتا ہے آگے سے آگے یہ باتیں پھیلانے کا. اور واقعی ऐसे लोग होते, ये भी अल्लाह की तरफ से एक सजा समझने के, ये लामे आकबत भी आप कह सकते हैं, लियुदिल्ला में जो आया है, यानी नतीजा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जब वो खुद मुंह फेरता है ना, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो क्या करता है, फिर खुद भी भटकाना शुरू होता है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये खुद इसने मुंह फेरा ना, तो अल्लाह ने फिर इसको इसी काम के लिए छोड़ दिया कि जा फिर यही करता रहा। इसी तरह अगर कोई अल्लाह पे यकीन रखता है, ईमान रखता है, और उसका ईमान पक्का है, तो वो इंसान भी खैर की चाबी बन जाता है, वो लोगों में खैर फैलाता फिरता है। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, एक शर की तरफ रहनुमाई करता है, एक खैर की तरफ करता है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा वो खैर की तरफ लोगों को भी बुलाएगा, और जिसका जो झगड़े करता फिरता वो इसी तरफ लोगों को भी बुलाएगा। और हमने अभी क्या पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने लिख दिया जो इसके पीछे चलेगा फिर ये उसको गुमराही करेगा। ऐसे बंदे के लिए फिर क्या है, लहू फी दुनिया खिज्यून, इसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। और दुनिया में आप देखें अबू जहल का क्या अंजाम हुआ था, कुएं में उसकी लाश पड़ी हुई थी, इस तरह बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ था कुएं के अंदर, कब्र भी नहीं नसीब हुई। और अबू लहब का क्या हाल हुआ था, उस इसको वो बीमारी लग गई थी, चीखता था चिल्लाता था, उसके बच्चे भी उसके करीब नहीं आते थे, अकेला ही मर गया। जब मर गया तो तब भी औलाद ना पास आई, उन्होंने अपने गुलामों को कह दिया इसको ले जा जाके किसी घड़े में फेंको। उसको ऐसी एक बीमारी, स्किन डिजीज या ऐसी कुछ लग गई थी ना, कोई भी नहीं पास आना चाहता था, यानी उसको दफन करने के लिए भी ना औलाद आई। दुनिया की भी रुसवाई, अल्लाह दिखाता है दुनिया में भी ऐसे लोगों को रुसवा करता है वो। वनुज़ीकुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक, और हम चखाएंगे उसको क्यामत के दिन भी जलने का अजाब। और ये कोई ये ना सोचे कि हाय ये बेचारा ये क्या क्यों ऐसे हुआ, ताली का भी माँ कदमत यदा का, ये बवा जा उसके जो आगे भेजा तेरे दोनों हाथों ने, ये अपनी कमाई है ना, तुम झगड़ते थे और फिर तुम लोगों को भी गुमराह करते हो। और इतने कॉमन है ऐसे लोग आज के जो शर की चाबियां हैं, शर की तरफ लोगों को बुलाते हैं, कुरान पे एतराजात, दीन पे एतराजात, इसमें झगड़े, इतनी बहसें, और खुद को इतनी बड़ी चीज और इतने बड़े इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और फिर उसके बाद आगे भी इसी प्रोपेगेंडा जैसे होता है ना, आगे भी यही चीजें फैलाते हैं। और फिर ये लोग इल्म भी नहीं रखते, यानी ऐसे भी नहीं होता कि कोई बहुत बड़े आलिम दीन हो या कोई बहुत उनको कुरान और हदीस पे उबूर हो, कोई कोई कुछ भी नहीं, लेकिन समझते ऐसे ही है कि हमें सब पता, दुनिया और आखरत की देखें कैसी रुसवाई है। और ये उनके अपने कसूर हैं जिसकी वजह से ऐसे हुआ, यदा अपने दोनों हाथों की कमाई है। इंसान को ऊपर जब भी याद रखे दुनिया में या आखरत के अंदर जो भी ऐसी रुसवाइयां या ऐसे अजाब है ना, उसके अपने हाथों की कमाई से होते हैं। अल्लाह ताला अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लाम लिलआबीद, इसको हाईलाइट कर लें, इसको याद कर लें, खुदा के लिए इसका यकीन दिल में पैदा कर लें। हाईलाइट करने से मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपको इम्पोर्टेंट आयत टेस्ट के लिए दे रही हूँ, इसका यकीन प्लीज अपने दिल में पैदा करें कि मेरा रब जो है ना वो कभी जुल्म नहीं करता अपने मनों पे। आप कितने भी दुनिया में वर्स हालात देख लेना, वर्स हालात, कभी मुंह से ये ना निकालना कि अल्लाह ने कोई जुल्म किया। प्लीज ये यकीन दिल में पैदा करें। आपने अपने अल्लाह को पहचाना ही नहीं अगर आपने किसी दिन ये कह दिया ना कि ये तो बड़ा जुल्म है, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, तो बड़ा गलत हो गया। ये अगर आपने किसी दिन कह दिया ना, आपने जाना ही नहीं उस रब को। अगर आप जान लेते ना तो कभी भी ये बात ना कहते, क्योंकि मेरा रब नहीं जुल्म करता। ये ऐसे होना चाहिए, दुनिया उलट के पुलट हो जाए, जमीन ऊपर और आसमान नीचे भी आ जाना, फिर भी मैं यही कहूंगी मेरा रब नहीं जुल्म करता। तुम खुद अपनी जानों पे करते हो, तुमने खुद किया, तुम्हारे अपने हाथों की कमाईयां हैं, وہ نہیں ظلم کرتا. یہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ دے, آپ نے اس بات کو نہیں ماننا کبھی بھی کہ کوئی رب ظلم کرے گا. اس نے تو ظلم اپنے پر حرام کی, وہ تو کہتا ہے تم بھی نا آپس میں ظلم کرو میرے بندو, میں نے اپنے پر ظلم حرام, حالانکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے جو مرضی کرے. وہ تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دینا تو اس کا ظلم نہیں ہے, اس کا ظلم نہیں ہے, اس کا ظلم نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی اس کی مہربانیاں ہیں, اس کے بعد ایک پل ایک پل ایک سانس کے لیے بھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اس کی دیوی سانس لے کے اس کی نافرمانی کرنا وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے تھے کہ سانس کی بھی نہیں تم اس کی شکر گزاری اور قدر کر سکتے اس کے اوپر بھی. تو جو تم نافرمانیاں کرتے اس کے اوپر وہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو اس کا ظلم کیسے ہو گیا؟ وہ ظلم نہیں کرتا, اور وہ بھی اپنے بندوں پہ جن کا وہ رب ہے. یہ صرف وہ انسان کہہ سکتا ہے جس نے پہچانا نہیں ہے, پہچانا نہیں ہے رب کو. ابھی ابھی اور کھوجو, ابھی اور اس سفر کو, اس سفر میں ابھی پھر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب ظلم کر سکتا, اگر آپ کو کبھی دل میں یہ خیال بھی کبھی آتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت بہت آپ کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. ابھی 17ویں پارے پہ آ گئے, اگر آپ کو ابھی بھی نہیں یہ سمجھ آئی یہ بات, تو پھر بہت ابھی سیکھنا ہے, بہت ابھی سیکھنا. ابھی رب کی معرفت نہیں آئی, ابھی نہیں پہچانا تم نے رب کون ہے تمہارا. یہ پہچان ہی تو کرا رہا ہے سارا قرآن, تمہارا رب کون ہے, پہچانو اس کو. تم نے ابھی نہیں پہچانا کہ وہ ظلم نہیں کرتا کبھی. اچھا اب ہم کہیں ظلام, بہت مبالغہ اس کے اندر, بہت زیادہ نہیں ظلم کرتا, شاید تھوڑا کرتا ہو. نہیں نہیں, جب زیادہ مبالغہ آ جاتا ہے نا تو اس میں پھر اس چیز کا معنی آتا ہے کہ کسی قسم کا بھی نہیں, کسی طرح کا بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا, نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت میں. ٹھیک ہے,